प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवे श्रीगोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतभुवे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं दाय देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान् नवनीतराभात् पीतांबरारनुनगम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमोऽस्तु परमात्मने नमस्ति गोविन्दाय नमो नमः श्रीचरणकमले नारायण 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 गावो विश्वस्य मातरः गाय है वो संपूर्ण संसार की माँ है। जैसे माँ की दया सब बालकों पर बराबर होती है ऐसे गाय का पालन करने वाला हो चाहे गाय का मरण करने वाला हो सबके ऊपर गऊ की बराबर दया सबको बराबर दूध देती है बछड़ा देती है बछड़ी देती है सबकी रक्षा करती है। जब ब्रह्मा जी ने भगवान की आज्ञा हुई ब्रह्मा जी को तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची। उस सृष्टि रचना में सबसे पहले गाय की रचना की। देवता पहले हुए पीछे गाय की रचना हुई तो गौ की रचना हुई तो इसमें भगवान खुश हुए प्रसन्न हुए तो देवताओं ने कहा भाई इसमें हम रहेंगे तो देवताओं के रहने के लिए स्थान दिया। तो रोम रोम में देवता रहते हैं खुरों में नाग देवता रहते हैं उनके थनों में दूध में चारों समुद्र रहते हैं चंद्रमा और सूर्य आंखों में रहते हैं नाग देवता उनमें रहते हैं सब देवता रहते हैं। तो सब देवता अगर विराजमान हो गए गाय के संपूर्ण शरीर में ये जो बड़े आदमी होते हैं ना और स्टेशन पर जाते हैं तो देरी से जाते हैं क्योंकि जगह उनकी रिजर्व रहती है। ऐसे लक्ष्मी जी आई कि भाई हमारे को भी यहाँ निवास मिलना चाहिए क्योंकि महाराज जब जगह तो रुक गई जगह रही नहीं तो कहीं भी स्थान तो मिलना चाहिए। तो लक्ष्मी जी के लिए गोबर मिला गोबर में लक्ष्मी जी रहती है गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का निवास है। इस वजह से ये खेती करने वाले जब खेती करते हैं खला निकालते हैं सिट्टी इकट्ठी करते हैं और फिर धान निकालते हैं तो वहां माद बनाते हैं उनको गाता गा करके तो उसके ऊपर छानों की राख करके और लकीर निकाल देते हैं। नहीं तो ये स्यारी होती है वो स्यार देती है और गऊ का वो गऊ के गोबर का जो छाना बना उनकी राख बनी वो आ जाती तो वहां वो धान साधती नहीं। बाजरी का बोर बनता है जब सब छान के बाल की छिलका निकाल देते हैं उसको इकट्ठी करते हैं उसको बोर कहते हैं तो उसके ऊपर भी गेहूं के छानों की राख की राख लगाते हैं। खड़ा तैयार हो जाता है तो श्रावण पूजते हैं उनमें गाय का गोबर ला करके उस पर छिट्टियां रख करके अरवा उनका पूजन होता है। वहाँ फिर वो बाजरे की बुगरी बनाते हैं वो सब खाते हैं अरवा पर कोई मांगने वाला आता है तो उसी रूप देते है। तो खड़ा किया कहते खड़ा किया, उनको खड़ के वो धान देते है। तो गऊ को इस तरह से पूजन मानते हैं। गोवर्धन का पूजन होता है दिवाली का, तो गोवर्धन पूज के अभी गाय का गोबर ला करके गोवर्धन बनाते हैं। उसके बेर है, काचर है, सिट्टा है, फड़ी है, ऐसी लाकर ऊपर रखते हैं और गोवर्धन पूजन होता है। वो भी गोवर्धन गोबर के ऊपर होता है। घर में कोई अशुद्धि हो जाती है तो उसकी सफाई निर्मल करने के लिए गाय के गोबर का चौका लगाते हैं। बालक पैदा होते हैं आपके, उसका सूर्य पूजन होता है, नामकरण संस्कार होता है, उसका नाम निकालते हैं, तो वहां पे गाय के गोबर का चौका लगा करके और ठीक बीच में चौका लगा हुआ कुमकुम से लेकर और सूर्य पूजन होता है। ब्राह्मण आते हैं वो सबकी पवित्रता करते हैं, वो उनका सूतक लगता है, जो होते हैं सुआ और सूतक, जो ये पैदा होता है बालक उसका सुआ लगते हैं और कोई मर जाता है तो सूतक लगता है, दोनों को याद कर सूतक कहते हैं। सूतक लग गया मानो वो अशुद्ध हो गई चीज, तो वो बालक पैदा होता है उस समय सूतक नहीं लगता है, बालक का नालक छेदन होता है जिससे बालक अपने खुराक खाता है, वो नाभि में नाल लगी रहती है नाला, उससे उसको पोषण होता है। ये सबसे पहले नाभि बनती है, छोटा सा बेर की तरह यहाँ बनता है, उसे वो नाल लगी रहती है जिससे उसको, जैसे काकड़ी के फल लगे, मतीरा के फल लगे, आम के फल लगे तो वो गूंद से उनको रस मिलता है, इस तरह से माँ का रस, माँ के खाए पिए का सार चीज वो नार में हो जाता है और वो बड़ा होता है, फिर बोधेर के समान होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, ऐसे होकर ये मध्य भाग बढ़ता है। इस मध्य भाग से फिर पैर निकलते हैं, जैसे टहनिया निकले इस तरह से पैर निकलते हैं, हाथ निकलते हैं, माथा निकलता है, माथे में फिर आंखें हैं, नाक है, कान है, मुख है, ये निकलते हैं। इस तरह से बालक बनता है तो वो अशुद्ध होता है, तो अशुद्धि कब होती है कि जब नाल छेदन हो जाता है, नालो मोड़न हार, नाल मोड़ से, उस नाल मोड़ से कहते हैं, नाला चूड़ी से काटा जाता है, उस समय फिर सूचक लगता है, फिर बाद में दान पुण्य नहीं होता, उनसे पहले दान पुण्य होते हैं, बाल के पैदा होने पर दान भी होता है, ब्राह्मण भोजन भी होता है, सब कुछ होता है, नाला छेदन होने के बाद फिर उसमें सूचक लग जाता है, उसमें 10 दिन कम से कम, और भी बाल अगर नक्षत्रों से पैदा होता है, मूला आदि नक्षत्र होते हैं, तो उस नक्षत्र कर्ण नक्षत्रों में उनका कई दिनों के बाद शुद्धि होती है। तो शुद्धि करते समय गोबर और गोमूत्र लाते हैं, घर सबका सब अशुद्ध हो गया तो उसमें गोमूत्र ला करके छिड़क देते हैं जिससे वो घर शुद्ध हो जाता है। गोबर गोमूत्र मिलाकर छिड़क देने से वो शुद्धि हो जाती है, नहीं तो अशुद्धि रहती है। ऐसे ही कोई मर जाता है तो मरने पर भी अशुद्धि होती है, उसके भी अशुद्धि विशेषकर दाह क्रिया करने से होती है। दाह क्रिया करने के बाद 12 दिन फिर उनके घर का अनादि नहीं देते, 10-11 दिनों तक उनकी अशुद्धि रहती है, उनमें दान पुण्य भी नहीं होते और भले आदमी उन घर का अन्न भी नहीं देते, अशुद्ध हो जाता है। तो अशुद्धि में शुद्ध करना हो तो गाय के गोबर से करते हैं, गोमूत्र से शुद्धि करते हैं, अपवित्रता हो जाती है तो जात कर्म संस्कार करते हैं तो उसमें गोबर और गोमूत्र देते हैं। उसका फिर जनेऊ संस्कार होता है, ब्राह्मण के जनेऊ दी जाती है तो उनको उपवास किया जाता है, उपवास के बाद उनमें उपवास में पंचगव्य देते हैं, पंचगव्य गौ का गोबर और गौ का गोमूत्र और उसका दूध और दही और घी, ये पंचगव्य है, ये मिला करके उसको प्राशन कराते हैं। जिसको जनेऊ देना है उसे ये पांचों चीजें खानी पड़ती, खाने से शुद्ध हो जाता है, फिर उसको जनेऊ दी जाती है पवित्र करने के लिए। तो पंचगव्य होता है गाय का, तो दूध और दही और घी ये तीन तो ये होती है, एक गोमूत्र एक गोबर ये दिया जाता है। उनमें गायों का अलग अलग निकलता है और कपिला गाय के पास भी लिए जा सकते हैं। कपिला गाय होती है कौली गाय, जिनके खुर भी सफेद होते हैं, मुंह भी काला होता है सफेद लाल लाल होता है, आंखों के ऊपर बाण होता है ये भी सफेद होता है, पूंछ भी जिसका लाल लाल ऐसा होता है वो कपिला गाय होती है। उसके दर्शन का भी बड़ा महात्म्य है। कपिला गाय का अगर पंचगव्य मिल जाए नहीं तो न्यारा विधान है कि उस गाय का गोबर उसका गोमूत्र उसका दूध उसका दही घी ऐसे लिया जाता है, कपिला सब लिया जाता है। तो कपिला गाय बड़े शुद्ध मानी जाती है, पवित्र मानी जाती है, दर्शनीय मानी जाती है। और कपिला कोई बैल भी कपिला होता है कवला, तो उसको हल नहीं चलाते है। आजकल तो कई हल चलाते हमने देखा है, लोग चलाते हैं, नहीं कौला बैल होता है उतराते नहीं। कपिले बैल का दान देते हैं, ब्राह्मण आदि को गाय देते हैं, तो कपिला दान का बड़ा महात्म्य है। कपिला भी दान दी जाए तो वो दो मुखी जब गऊ को ब्याने लगे जिसमें बच्चा बाहर आता है तो वो खुरों के से क्यों आता है, बीच में मस्तक होता है ऐसा आता है बाहर, उस भगत में दान का बड़ा भारी महात्म्य है। दोनों सम्मुख होता है, गाय का इस बछड़े का होता है उस गाय का होता है, उसमें दान दिया जाता है। तो गौ दान का बहुत बड़ा भारी महात्म्य माना गया है। ऐसा गौ दान दिए जाए तो गौ का दान देना है उसमें खुर है और सींग है रूपये के भी दे, उसमें रूपये का तुष्ट दे देते हैं, थोड़ा ऊपर कपड़ा उड़ा देते हैं, दोहनी होती है सरी और घूमिया ऐसा देकर वो उनसे वो दूर करके और पिएंगे बालक। तो ब्राह्मण को गौ दान देना चाहिए। ब्याह होता है उसमें गौ दान होता है, विशोत्सर्जन होता है जो बैल दान दिया जाता है, वो बैल में विशोत्सर्ग कहते हैं उसको, वो दिया जाता है जिसमें कोई मर जाए उसके पीछे गाय और बछड़े को दोनों को बछड़ा बछड़ी को ब्याह करके उनको देते हैं, जिसमें वो बैतरणी नदी आती है अगर नरकों के बीच में, उस बैतरणी नदी से पार करने के लिए गऊ होती है वो पार करती है। तो लोक में परलोक में सब जगह वो गऊ पार करती है। मृत्यु समय में गऊ ही तो मर रहा है तो गाय का दही मुख में दिया जाता है, मरने वाले के मुख में गऊ का दही, उनमें उस तुर सोने का तुझ कोई रतन ऐसा भी दिया जाता है, उनके अंगों में ऐसा देकर करते हैं। परंतु वहां गाय के दूध की बात होती है, ये बड़े बड़े यज्ञ होते हैं वो यज्ञ गाय के घी से ही होते हैं, भैंस बकरी भेड़ का घी उसमें काम नहीं आता है, गाय का शुद्ध घी होता है उससे यज्ञ होते हैं। यज्ञ होते हैं अग्नोपराष्ठा होती है, सम्यक आदित्य मुपतिष्ठते, अग्नि में ठीक मंत्रों से आहुति दी जाती है, शुक्र शुवार वो ऐसा होता है उसे, तो वो आहुति देने से आदित्य सूर्य भगवान की किरणों में पुष्टि आती है। तो अग्नोपराष्ठा होती सम्यक आदित्य मुपतिष्ठते, आदित्य जायते वृष्टि, आदित्य किरणों में शक्ति आती है, वो किरणों से जल खींचता है और निगरानी उत्सर्जामी से उससे वर्षा होती है। त्रिलोकी में तो यज्ञ बहुत ही पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव, कर्म ब्रह्मोद्भव वृद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भव तस्मा सर्वगतम ब्रह्म नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम्। प्राणी जितने पैदा होते हैं अन्न से पैदा होते हैं, और अन्न है वो बैलों से खेती की जाती है उनसे होता है, और अन्न जहाँ होता है खाद है। आजकल तो ट्रैक्टर चले हैं और खाद भी विदेशी आई है, विदेशी खाद से जमीन खराब हो जाती है, 3 वर्ष तक होती है, 3-4 वर्षों के बाद जमीन खराब होती है, विदेशों की खाद विदेशों में दी गई है, उनसे विदेशों की जमीन खराब हो गई। अब रुपया किलो, डेढ़ रुपया किलो गोबर बंबई से बड़े बड़े जहाज भर भर करके वो गोबर ले जाते हैं, वहाँ गोबर बिकता है। तो विदेशों में जाकर उस गोबर को देने से वे खेत पुष्ट होते हैं। हमारे यहाँ पर रहने वाले ढाणिया से ढाणी खेत में जो घर बना कर रहते हैं, वाले महीना उसको ढाणी कहते हैं। उस ढाणी में रहने वाले सौ सौ वर्ष तक उस खेत को ही बाते रहते हैं और जमीन पुरानी नहीं होती, सदैव फसल देती रहती है। कारण उसमें है कि गायें वहां बैठती रहती है, गोबर करती है, गोमूत्र करती है, उससे गायों की पुष्टि होती है। खेत का और गायों का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। खेत में घास आदि पैदा होता है तो वो पैदा होता है, वो उसे गायों की पुष्टि होती है और गायों के गोमूत्र और गोबर से खेत पुष्ट होते हैं। इनका गोमूत्र ये गाय का और पृथ्वी का, पृथ्वी माता है, गौ माता, इनका घनिष्ठ संबंध है। तो गोबर में आकर लक्ष्मी जी रही, गंगा जी पहुंची कि हमारा भी स्थान होना चाहिए, कि सब 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 तो रुक गई। तो क्या है कि गोमूत्र है, तो गोमूत्र में गंगा जी का निवास है। जैसे गंगा जल से सब पवित्र होते हैं, ऐसे गोमूत्र से पवित्र हो जाते हैं। गोमूत्र और गोबर से दवाया बनती है, बहुत से बड़े बड़े असाध्य रोग पेट के होते हैं, छाती के होते हैं, उनमें रोगों में गोमूत्र दिया जाए। गोमूत्र भी बूढ़ी गाय का नहीं, बूढ़ी गाय होती है उसका गोमूत्र बहुत तेज होता है, उसमें तेजाब बहुत होते हैं, वो आंतरों को गाड़ देते हैं। इस वास्ते गोमूत्र ने बछड़ी का लेना चाहिए, जो दूध पीने वाली बछड़ी हो उसका गोमूत्र ले जाए। उस सूत पर ऐसे ऐसे करने से वो गोमूत्र कर देती है, वो दो थोड़ा तीन थोड़ा रोज ना ले तो पेट के असाध्य रोग मिट जाते हैं। दवाया बनाते हैं बड़े बड़े जहर, कुचिला, भिलावा, सिंगी मोरा, सोमल, संख्या, ये जो बनाए जाते हैं तो उनको शुद्ध करते हैं। तो तेले तकरे गवार मूत्र, तेल से वो पवित्र होता है, छाछ से पवित्र होता है, और गाय का गोमूत्र है उसमें बुझावा देते हैं तो वो जहर भाग नष्ट हो जाता है। उसकी दवाया बनती है बहुत बढ़िया बढ़िया, ये विष है, जहर है, इनकी दवाया बनती है। बड़े बड़े असाध्य भयंकर रोग होते हैं, वो रोग दूर होते हैं तो उनमें गोमूत्र की महिमा है। जहर छाती में दर्द होता है, कलेजे दर्द होता है, तो गोमूत्र लेकर गोमूत्र को गर्म करो और उसके ऊपर लोहे की चलनी रख दो, उस चलनी के भीतर रख दो कपड़ा, वो कपड़ा अथवा पुरानी रुई, पुरानी रूई रख दो, वो यहाँ सिकता किया जाए तो कलेजा का दर्द, छाती का दर्द दूर होता है। ऐसे किया है सिद्धेदार जी लोग कराते थे, मैंने बहुत जगह देखा है, उससे रोग दूर होते हैं। गोमूत्र से बहुत रोग दूर होते हैं, पेट की बीमारियां बहुत दूर होती है। बिच्छू काट खावे तो गोबर लगाने से, उस गोबर जहां तक चढ़ा हुआ था गोबर लगा दो, गोबर में सान दो तो बिच्छू उतर जाता है। मिट्टी है उसको भिजो करके वो दे दी जाए, उससे उतर जाता है। एक आदमी मर गया तो काशी जी की बात सुनी है, कुआं को लेकर काशी के कुआ नदी को गंगा जी किनारे ले गए, कहते ये मर गया, क्यों मर गया, क्या हुआ, कि सांप काट गया, सांप के काटने से ये मर गए। तो वहां एक साधु बैठा था, कहते मरा नहीं है, ये मरा नहीं है, जीवित है, इसमें प्रावी जलाना नहीं, तो क्या करेंगे, गोबर लाओ। गाय का गोबर लाया, गाय का गोबर ला करके और बचा कर उसको सुला दिया, सुला कर उसे शरीर के सबके ऊपर गाय का गोबर रख दिया, नासिका उनकी साफ रखी, आंखें मेच कर कपड़ा देकर उसके ऊपर सब पर गोबर रख दिया। कुछ घंटे के बाद में श्वास आने लग गया उसको, वो जी गया। तो गोबर है वो जहर को खींचता है, पर भयंकर भयंकर जहर को वो दूर कर देता है गोबर। ऐसे मिट्टी होती है, मिट्टी चिकनी मिट्टी और थोड़ी बालू मिला दी जाए, ऐसे मिट्टी से देने से भी जहर दूर होता है, हैजा हो जाता है, जिसमें पेशाब तो आता नहीं, उल्टी और दस्त दोनों होती है, बड़ा भयंकर बीमारी है, वो 3 दिन में खत्म हो जाता है, घंटों में खत्म हो जाता है आदमी। ऐसे कई विवाह पर अगर गोबर लगाया जाए पेट पर या सूढ़ी नीचे मूत्रेंद्री ऊपर यहाँ यहाँ तक मिट्टी लगाई जाए, वो मिट्टी रखने से पेशाब हो जाता है, बस जाता है। मेरे खुद की बीती हुई बात है, उसमें उल्टी होती है उससे और दस्त लगती है, श्रद्धा एकदम टूट जाती है, शक्ति नष्ट हो जाती है, 2-3 मिनट में ठीक हो गया। तो यहाँ पृथ्वी माता है, गौ माता है, ये शरीर भी मिट्टी के बना हुआ है, तो मिट्टी से इलाज होता है। ऐसे बड़े भयंकर रोग भी गोमूत्र और गोबर और मिट्टी से दूर होते हैं। तो पृथ्वी माता है, जैसे माँ पालन करती है, रक्षा करती है, ऐसे पृथ्वी माता पालन करती है। आपके खास जरूरत ही अन्न की, जल की और कपड़े की, और चौथे नंबर में मकान की, इससे अपना निर्वाह होता है। तो बैल खेती करते बैलों से, तो बैलों से खेती होती है बढ़िया, ट्रैक्टरों से बढ़िया नहीं होती है खेती, दिखने में जल्दी हो जाती है और उपज हो जाती है, तो जल्दी होने पर भी वो बढ़िया नहीं होती। अगर हल बहा करके बैलों से खेती की जाती है, उन खेती में अनाज बड़ा पवित्र होता है, गोबर की खाद गोमूत्र की खाद से अन्न बड़ा पवित्र शुद्ध निर्मल होता है, और इन खाने से 1-2-3 साल तो ठीक होता है, फिर निकमी हो जाती है गाय जमीन, उनसे निकमी नहीं होती, जमीन को पुष्टि पहुंचती रहती है। उस गोबर से गैस बनती है, वो इकट्ठी करके गैस, वो इकट्ठी कर गोबर जो ढक्कन देकर उसे निकालते हैं, उस गैस से ये बिजली पैदा होती है, उस बिजली से फिर चूल्हा भी जलता है, पंखा भी चलता है, रोशनी भी होती है, जितने बिजली से काम हुए सब के सब भी होते हैं, वो गोबर इकट्ठा करते उसे गैस बनता है। ऋषि गैस वहाँ परमार्थ निकेतन में सब बनाया हुआ है, और गौशाला बिहानी है, वो जाकर हमने देखा है, तो जितने वहाँ नौकर जाकर रहते हैं बाजार के बाजार में, वह बिजली वह गोबर गोबर के गैस से बनी हुई बिजली का काम लेते हैं, मधुर जितने उनके सब रोटी और बनती है उस रोशनी से बनती है। गायों के लिए जो गवार आदि सिजाया जाता है उसमें वो बिजली से काम लेते हैं, वो बिजली गोबर से पैदा होती है, और उन्हें बिजली पैदा करने के बाद गोबर होता है उसमें तेजी कम हो जाती है, तो खेतों में देने के लिए खाद बढ़िया होती है, तुरंत के गोबर देने से उसमें तेजी बहुत होती है, जिससे खेती जल जाए ऐसी बात है, और वो गैस निकलने के बाद वो बहुत ही बढ़िया खाद होती है, जिससे खेत अच्छे पुष्ट होते हैं। गोमूत्र है, गोमूत्र की खाद बहुत बढ़िया होती है, तो गोमूत्र को जहाँ रखते हैं वहाँ लाइन बदल करके उनके थोड़े फर्श बना देते हैं, उससे उतरता है तो नीचे नाली बना देते, गोमूत्र जाता है वो इकट्ठा होता है, बर्तनों में ले लेते हैं, वो गोमूत्र जिस जमीन पर छिड़का जाए वहाँ फसल की जाए तो बहुत बढ़िया फसल होती है। गोमूत्र की खाद बहुत बढ़िया होती है और पवित्र होती है, गोमूत्र पवित्र करने वाली चीज है, तो उस खाद से पैदा होने वाला अन्न भी पवित्र होता है, साग पत्ती भी उनसे पवित्र होती है, इससे गोमूत्र तो गाय तो सब तरह से लाभदायक है। कई वर्षों पहले जब गांधी जी जीवित थे उस समय में उनका नवजीवन नाम एक पत्र निकलता था, गांधी जी संपादन करते थे, फिर दूसरा करने लगे, तो उसमें मैंने पढ़ा है कि बूढ़े से बूढ़ा बैल वो जितना चारा कर खाता है उतना गोमूत्र और गोबर पैदा कर देता है, उसका खर्चा भी वो आप निभा देता है, बूढ़ा बैल जो हर में काम नहीं आता, खेत में और गाड़ी में और पानी निकालने में काम नहीं आता, तो उनके भी इसे मारना नहीं चाहिए। वो गो हत्या आज हो रही है बहुत पैमाने में, स्वराज नहीं हुआ उस समय गो हत्या होती थी बहुत, हुई उनके 6-7 गुना अधिक गो हत्या आज होती, बहुत ज्यादा गो हत्या बढ़ गई है। वो कहते हैं गो हत्या से हमारे मांस विदेशों में जाता है, इराक ईरान आदि मुसलमानों के देश है, उन देशों में वो गोमांस जाता है, वो गोमांस बढ़िया होता है, जो बसरा बसरी है, जवान बसरा बसरी, इनका गोमांस बहुत बढ़िया होता है। गाय का तो 90-100 रुपया किलो होता है, वाले का 200-300, 350 रुपया एक किलो का ऐसा होता है। तो नागौर के मेले में बसरा बसरी खरीद करके ट्रकों भर भर के मुंबई ले जाते हैं। वहां पवनार है, वो है क्या है वो कस कसाई खाना, हम गए वहां देखा है देवनार। तो देवनार में वहां कसाई खाना है, पशुबध ऐसे ऐसा बोर्ड लिखा हुआ है। हम लोग गए थे तो बाहर के दिखा बहुत दूर में कसाई खाना बना हुआ है, मशीनों से गायों को मारी जाती है। और जगह आदमी सुनेंगे गायों के गायों के मारने के लिए ऐसी एक मकान होता है बहुत बड़ा, उसमें सड़क होती है नीचे, जो गाय जाते दौड़ के नीचे पड़े गिर जाए, नीचे जहां पड़ते नीचे गाय इकट्ठी हो जाए, फिर दरवाजा बंद कर देते हैं। फिर बहुत गर्म गर्म पानी जिनसे गाय कांप उठे बेचारी, ऐसे गर्म पानी उसके ऊपर डालते हैं और बैतों के साथ साथ लगाते हैं जिनसे धुआं उठ जाते हैं। और वो ऐसे नरम होती है, उसकी जीती जीते का चमड़ा उतारते हैं, वो चमड़ा नरम होता है, बढ़िया बढ़िया मोटरों में लगता है और कामों में लगता है। बस चर्म का प्रयोग करते हैं लोग, उसका मांस होता है वो बड़ा अच्छा होता है, उसमें भी उसको सुखा सुखा करके विदेशों में बेचते हैं, उनका बड़ा दाम बढ़ता है। तो सरकार की बहुत पैदा होती है गोमांस से, पर यूं विचार नहीं है कि गौ काटता कोई फिर क्या होगा, फिर कैसे ये होगा। अब गौ जीती रहे तो कितना लाभ देती है, मरने पर भी उसके सींग अलग बिकते हैं, आंतें अलग बिकती है, आंतों से उनकी बनती है दूध में डाली जाए पनीर बनता है पनीर, तो वो दूध ठस जाता है कम जम जाता है। वो गाय का तो गाय भी हिंदुस्तान की गाय के विशेष शक्ति होती है, विदेशों में हिंदुस्तानी गाय की आंतें बहुत कीमती मानी जाती है, बड़े दाम बढ़ते हैं उसके, हड्डियों के दाम बढ़ते हैं, चमड़े के दाम बढ़ते हैं, मांस के दाम बढ़ते हैं, आंतों के दाम बढ़ते हैं ऐसे, और गोमूत्र और गोबर के दाम बढ़ते हैं ऐसे, उन गायों का नाश किया जाता है। अगर वे जीती रहे तो कितनी बात बढ़िया है कि जिनके द्वारा हमारा पोषण होता है वे गाय मारी जाती है, बड़ी निर्दयता से वे गाय भीतर चली जाती है, फिर मशीनों में दे देते हैं। तो मशीन में जाते ही सींग अलग है, हड्डी अलग है, चमड़ा अलग है, चर्बी अलग है, मांस अलग है, ये अलग अलग करके अलग अलग हो जाता है टुकड़ा टुकड़ा, जीती जीती को जैसे गौओं को मारते हैं बुरी दशा से, ऐसे गो हत्या हो रही है। तो गो हत्या न हो इसके लिए यहाँ खेती करते हो उनसे कहना है कि आप गायों को बेचो मत, खेती करते हो खेती के साथ गौओं का संबंध है तो खेती से गायों पड़ेगी, और गायों के गोबर से आपकी खेती पुष्ट होगी, जमीन पुष्ट होगी, इस बात से बेचो मत। गाय और माय बेचने लायक नहीं होते, परंतु कांग्रेस ने कह दिया है कि बल बूढ़े बैल बेचो, बैल बूढ़े बेच दो जो उनका चमड़ा काम आ गया है। उम्र बेचारा बैल आपके बाहर खेती करी, और जो मारवाड़ में थड़ी में उधर कुएं होते हैं गहरे गहरे 300-300 हाथ पानी, उससे गोब वो पानी निकालते हैं तो बैल निकालते हैं, तो पानी बैलों से मिलता है, खेती करने से बिनोरा से उसके ये पैदा होती है, बनी बनी से कुपास होता है, कुपास से ये कपड़े होते हैं आपके, ये सब बैलों से खेती होती है, अन्न इनसे होता है, वहाँ थड़ी में तो पानी भी उनसे निकालते हैं, अन्न और जल और कपड़ा ये पैदा बैलों से होता है, उनको मारने बड़ी बुरी दशा से। वहां जाकर मैं देखा कि बैलों के ट्रक भरे आते हैं, और ये देखो तो सींग के सींग दिखे दूध हजारों के तादाद में, ऐसे रोजाना कट के वो काट करके उनका चमड़ा और मांस और ले जा करके विदेशों में बिकता है, उनका बड़ा दाम बढ़ता है, उनसे फिर मशीन आती है ऐसी चीजें खरीदते हैं वहां से, यहाँ से ऐसे ऐसे विचार होता है। अब इतने इतने हत्या करने पर, विदेशों को दान देने पर, अपने हिंदुस्तान पर कर्जा कर्जा इतना हो गया है, विदेशों से कर्जा लिया है जिसमें कहते हिंदुस्तान की बिक्री हो जाए तो कर्जा नहीं उतरेगा, इतना कर्जा चढ़ गया है। पहले गौवती ऐसी नहीं होती थी, उस समय कर्जा नहीं था। ये खेतों में भी जो जानवरों को मारते हैं और खेती में ऐसा अच्छा होगा जिसमें शेर दो शेर की बाजी मिलती है, शेर की भी मिलती नहीं, शेर का भी अनाज मिलता नहीं, ऐसे महंगे हो गए। नहीं तो कार पड़ जाते थे, सपने कार में 10-12 शेर कणक बिकती थी 1 रुपये की। महान काल, भयंकर काल था, उसमें भी गेहूं आदि बाजरा की इतनी बार हमारा सस्ते थे। आज अनाज ज्यादा पैदा हुआ, कोरा धोखा दे रहे हैं, जानवरों को मारते हैं, गायों को भी मारते हैं, बैलों को भी मारते हैं, जानवरों को भी मारते हैं। मारने के बीच में आज हिंदुस्तान सबसे अधिक है, दूसरे देशों की इतनी खाद नहीं मिलती। यहाँ गायों की, भैंसों की, भेड़ों की, बकरियों की, हाथी की खाद आती। मैंने एक चूड़ी लाल दिखाई थी, इसने टेप, उसमें हाथी को मार रहे हैं, हाथी का दांत उखाड़ रहे हैं, पूरी तरह से उनको मार रहे हैं, सांप को मार करके कील ठोकर उसे मुख के ऊपर चला करके कील मार दे, फिर उसे जीते जीते चमड़ा उतारते हैं लंबा लंबा वो चमड़ा। तो चमड़े के व्यापार में हिंदुस्तान सबसे तेज हुआ है, इतना चमड़ा किसी देश से नहीं आता। यहाँ लोमड़ी है, सियालिया है, बेचारे हिरन है, ऐसों का चमड़ा वहां पर बिकता है। और डॉक्टरों ने सिद्ध किया है कि चूहे में तेल बहुत होता है, चूहा खाना चाहिए, ऊंदरों को खाना चाहिए, ऐसे ऊंदरों को खाना लोगों ने पछता किया है, उनमें तेल बहुत होता है, ऐसे सूर में चर्बी बहुत होती है। तो ये चीजें ज्यादा चर्बी और तेल वाली है, ये पुष्टि करने वाली है, ऐसा डॉक्टरों ने कहा है। लोग ऐसा भी करते हैं, क्या करें, दुख होता है। हमारा जो बहम होता है कि गर्भ गिराते हैं उन छोरों को भी खा जाते हैं, वो तो पता नहीं है भाई। वहां एक होटल में वो मांस बिकता था, उस मांस में छोटे बालक की अंगुली, छोटी अंगुली उस मांस में निकली, बड़ा हल्ला हुआ, छिपा छिपा कर करते इससे से मांस की दुकानों में, उन्हें वहां होटलों में मांस का पका पका के बिक्री करते हैं। ऐसी ऐसी दशा हो रही है, वो वंश के ऊपर बड़ी भारी आफत आ रही है। गौओं की रक्षा करना आपका हमारा सबका काम है। हम तो क्या करें भाई, बस बता देते हैं, सुनी हुई बातें, कोई पुस्तकों में पढ़ी हुई बातें, काम तो आप करोगे तब होगा, हम क्या करें। हम तो भिक्षा पा लेते हैं, अपना निर्वाह करते हैं। आप लोग कृपा करो, गौओं को रखो, ऐसा का गौ हम बेचेंगे ही नहीं। बूढ़ी गाय, बूढ़ा बैल होकर मर जाए तो अच्छा है, उनको अगर सांड आदि मर जाए, उनको जमीन में गाड़ दिया जाए तो जमीन में बड़ी पुष्टि होती है, उनसे खेती और अच्छी होती है। इस वास्ते अपने तो मारना नहीं चाहिए, इनको बेचना नहीं चाहिए। अपने घरों में से गाय को बेचे नहीं, बहन बेटे को दे सकते हैं, ब्राह्मण को दे सकते हैं, पर उनको भी कह देना का बेटा बेचना मत, गाय को बेचना नहीं चाहिए। अपने घर में माई तो होते हैं, बूढ़ी माँ है, बूढ़े बाप है, क्या वो अब काम नहीं करते तो क्या उनकी बिक्री हो जाए। तो गाय और माँ ये बेचने के नहीं होते। पुराने जमाने में दूध भी बिक्री नहीं करते थे, शहरों में तो होता था, गांव में दूध बिक्री नहीं करते। मेरे को याद है ये बात, बचपन की बात, दूध की बिक्री नहीं करते थे। दूध वैसे गाय का दूध राम राम राम, घी बिक्री करते थे पर दूध की बिक्री नहीं करते। आजकल छाछ की बिक्री भी होती है, दूध की भी बिक्री होती है, दही की भी बिक्री होती है, गोबर की भी बिक्री होती है, ऐसा हमने सुना है। तो ये सब उनकी चीजों की बिक्री होती है। गांव में दूध बेचते नहीं थे, ले आते थे। हम गए थे कोलार, तो हमारे साथ दूधा धरी थी, तो उनको दूध के लिए रात्रि में खिदवाई गाँव था, उसके गए वहां से रात्रि में मैं दूध मांग कर आया, भूला मतलब को पिलाया था, तो इसमें से दूध लाया था। तो दूध यूँ दे देते हैं, बेचते नहीं, पैसों से नहीं देते थे, ऐसी बात है। दूध भी बिक्री होने लग गया। खेतों में जो फल होते थे, काकड़ी, मतीरा, काचर, इनको भी बेचते नहीं थे। और कोई खाओ मतीरा खाओ, ज्यादा मतीरा हुए उस समय मैंने देखा है, कोई खा लो मतीरा खा लो, वो खुबरी और बीज होते हैं वो अपने ले लेते हैं, और गिर खाओ कोई खूब खुला खाओ कभी। और कैसे भी याद चलाते हैं तब कि महाराज अटाओ बटाओ केवलिया हवा एवलिया ये कोई आ जा तो उनके भाषा श्री कमेड़ी इनके भाग का हमारे को ध्यान है महाराज ऐसा कहकर हल सला से और हम ऐसी दुआई देते हैं पहले उनका भी काम हो जाए। इसलिए से हमारा काम उपकार का होता था, दूसरों के हित करने के लिए होता था। खेतों में ऐसे खुले रहते थे, वहाँ गऊ चराने वाले भेड़ बकरी चराने वाले वो ले जाते थे काकड़िया मसीरा, तो मना नहीं करते। आजकल मना करते हैं, आजकल तो दाम बढ़ते है ना, पैसा बढ़ने लग गया। पहले खेत का फल बिक्री नहीं करते थे, पहला फल देते थे मंदिरों में ब्राह्मणों के यहाँ घरों में, वो अपने काम में नहीं ले रहे थे। साग पत्ती फली आदि होती है तो पहली होती है तो मंदिर में ले जाते हैं अथवा ब्राह्मणों को हम दे देते हैं, उसके बाद अपने काम में लेते हैं। गाय खरीदते हैं तो गाय का दूध भी पहला दूध होता है वो ब्राह्मणों को इनको दे देते हैं, फिर उन गाय का अपन दूध काम में लेते हैं। इस तरह से हर एक चीज शुद्ध होती है। यज्ञ शिष्टा संतो मुचिंते सर्व किसे यज्ञ शिष्टा अमृत ब्रह्म सनातनम, वो यज्ञ शेष होता है। वो यज्ञ शेष के आज रामदेव जी पूजा करते बाबा जी हे 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 बाबा जी हे मतलब वो शेष वो हे कहते हैं, सकार को है बोलते ही है बोलते मारवाड़ी की जोधपुर की भाषा। तो वे बाबा जी से बाबा जी हे लोग बाबा जी हे तो वो शेष मानो भोजन को कराया उसमें आहुति हो गई, ठाकुर जी भोग लगा दिया, अब वो सब का सब शेष है, पवित्र हो गया। वो पवित्र अन्न पाते थे, आज अपने लिए बनाते। गीता में लिखा है भुंजते थे तो रम पापा ये पतन के आत्म कारणार्थ, जो अपने लिए पकाते खाते हैं वे पापी कोरा पाप का ही भक्षण करते हैं। गीता में लिखा है कोरा पाप का, तो अपने लिए नहीं पकाते, दुनिया के हित के लिए रसोई बनाते हैं, सबको भोजन कराते हैं, उनको देख करके फिर खाते हैं। पितरों के लिए भी कहते हैं बलि बस वैष्णुदेव पांच बलियों की होती है, पांच इसमें बलि है खास गऊ के लिए, कुत्ते के लिए, कौवे के लिए, गाय के लिए, ऐसे बलि होती है कीड़ियों के लिए। ऐसे पांच हिंसा होती है, गृहस्थ होता है, गृहस्थ में एक चक्की है, एक ऊखर है, एक चूल्हा है, एक पलिंदा है, इनमें जो हिंसा होती है उन पांच हिंसा को बचने के लिए पांच यज्ञ है, वो बलि वैष्णुदेव यज्ञ कहलाता है। तो घर में रसोई बन जाए तो बलि वैष्णुदेव करके रसोई पवित्र कहने करनी चाहिए। पंच सूना गृहस्थ ताभी स्वर्ग नवींद थी, पांच हत्या रोजाना होती है और पांच ऋण है हमारे ऊपर, पितृ ऋण है, ऋषि ऋण है, देव ऋण है और भूत ऋण है, इनका ऋण है सबका, मानो इनकी सहायता से हमारा काम चलता है। तो ऋषियों का ऋण ऐसे गौ माता का भी ऋण है, उनका दूध लेते हैं, दही लेते हैं, खाते हैं, तो गौओं की रक्षा करना हमारा धर्म है, नहीं करते हैं तो कृतज्ञ होते हैं, गौओं का दूध दही खा लेते हैं, रक्षा करते नहीं वह ऋण होता है। ऐसे पितृ ऋण है, पिता है, पितामह, दादा परदादा, उनका ऋण है, उनका श्राद्ध करना चाहिए, पिंड देना चाहिए, पानी देना चाहिए, पितृ ऋण है। ऐसे ऋषि ऋण है, ऋषि महात्माओं ने ग्रंथ रचना की है, बड़े बड़े ग्रंथ रचे हैं, तो गायत्री आदि का मंत्र जप करना और ऋषियों के स्तोत्र बनाए हुए, पुराण बनाए हुए, उनका पठन पाठन करना रोजाना, जिनसे वो ऋण हमारे पर है। उन्होंने ऐसे हमारे लिए कहा भी पीछे संतान होगी उनको ज्ञान मिले, तो ये शास्त्रों का ऋण है, वो ऋषियों का ऋण है, शरीर मिला ये पितरों का ऋण है, और देवता वर्षा करते हैं, घाम तपती है, वायु चलती है, ये देव ऋण है। देवताओं की रोजाना आहुति देनी चाहिए जिससे देव ऋण मिलता है। देव ऋत है, देव है वो सुगंध से तृप्त होते हैं, उनका भोजन घी होता है, अमृत यहाँ का घी, गाय का घी माना गया, उसकी आहुति देते हैं अग्नि में, वो विष्णु जिमाते विष्णुदेव, तो वो सब विश्व को मिलता है, देवताओं को मिलता है, देवता अपने पुष्ट होते हैं। आज वैसी वर्षा नहीं होती, वैसा शीत घाम आदि भी बहुत ज्यादा जिसे नुकसान हो जाए। अब गए वर्ष में बहुत पड़ी गर्मी, बड़ी जोर से पड़ी, बड़ी भयंकर गर्मी, तो ये गर्मी है शांत होती है, देवताओं को जब नहीं देते, देवताओं की आहुति करते नहीं, उनके लिए यज्ञ न करने से वो देवता रुष्ट हो जाते, उनको पुष्टि नहीं पहुंचती, उससे फिर ये वर्षा भी ठीक नहीं होती थी। मेरे बचपन की बात याद है, घर पर से आने लगे तो घटा आई है, उत्तर की तरफ से घटा आई वर्षा आती है तो लग रही है सब भीतर को खाट पाट में भीजने जाए, भीतर से ऊपर से बोलती जोर से और एक चरांतर करती थी और सौ सौ कोष में लगे चार वर्षा हो जाती है, ऐसी इसी होती थी। आज कहते हैं कलयुग में एक गाय खड़ी है तो एक सिंह बीतेगा, एक सिंह सूखा रह जाएगा, ऐसी छोटी छोटी वर्षा होती थोड़ी थोड़ी। हम गए अभी दरवाजे से पैसे आए तो कहीं वर्षा ज्यादा है कहीं कम थी, उसने वर्षा होने लग गई तो कहीं तो पानी बह रहा है कहीं सूखा ही पड़ा है, छोटी छोटी दूर वर्षा ऐसे खंड वर्षा होती थोड़ी। पहले बस ऐसी होती थी बड़ी जोर से, क्योंकि वे सब धर्म का पालन करते थे, अपने अपने धर्म का पालन करना ये भी यज्ञ है। हमने गीता में यज्ञ इसको लिखा है यज्ञ साथ कर्मो नो को कर्म बंधना, तो यज्ञ का अर्थ ही हमने यही किया है कि दुनिया की सबकी रक्षा हो, अपने अपने कर्तव्य के द्वारा सबका पालन पोषण। खेती करने वाले वो खेती करना अनाज से पूर्ति करे, ऐसे साग बनाने वाला साग से, तेल निकालना तेल से, बर्तन बनाने वाले भी अपने बर्तनों से, ये एक एक चीज से देकर के आदर प्रदान कर सबका काम चलते थे। इस तरह से हमारे देश की प्रथा चलती थी। ये सिक्का नहीं था, सिक्के से बहुत दरिद्रता आई है, लोग धन इकट्ठा करने लगे, पैसा इकट्ठा कर दिया, साथ दुनिया में दरिद्रता पैदा कर दी। धनी आदमियों ने सबके रोक करके अपने पास रख लिए, नहीं तो अनाज आदि लेते उनको दे दे उसे चीज ले आते, अनाज देकर साग लिया, अनाज देकर हांडी लिया, अनाज देकर अपने भोजन लिया, अनाज देकर तेल लिया है वो तेल और तेल देकर दे लेते थे ऐसे अपने घर में चीज, उनको दे करके उसे बदले में अपने खाने के लिए चीज सब ले लेते थे। तो इसमें ये सब चीजों पैदा करने में गाय का हाथ मुख्य है, सबसे मुख्य गाय मानी गई है। गाय के समान पवित्र कोई चीज नहीं है, जिसका गोबर भी पवित्र, गोमूत्र भी पवित्र, वो बैठ जाए तो वो जमीन जमीन पवित्र। विवाह होता है, उस विवाह में मूर्त देखा जाता है बरकन्या को लेकर, और मूर्त ऐसा न मिले तो वही गोद हो गया। जिस समय में गाय आवे, गायों का खुर है जगह से उड़े रहती, उस समय में ब्याह कर दो, वो गोद हो गया है। मारवाड़े गुजरकियों का सवाल, गुजरकियों का सवाल, वो गुजर क्या क्या है, गोद होली का है, वो गुजर क्या होगी मारा अपशब्द होने से, तो उसमें सवा है उसमें ब्याह कर दो। वो बड़ा सुंदर बड़ा शुद्ध समय होता है, जैसे वे गाय आती है उनकी रज्जी उड़ती है। वो भागवत में भगवान गोचारण की गई है तो दो बार ऐसा आया कि गायों की खुर से भगवान के केश है जगह सब में रज्जी लगी हुई है और गायों के पीछे पीछे आते हैं, ऐसा उनके सुंदर वर्णन आया है। तो गौधूली की बड़ी भारी महिमा है, खुरों की जो खुरों से पवित्र हो जाती है जमीन, गोमूत्र से गोबर से गोपुर खुरों के चलने से गवी गाय पवित्र होती है जमीन। ऐसी गायों की रक्षा करो, घरों में रखो कि जिससे आपकी सब तरह की पवित्रता हो। गौ दान करो, बैल बेटी को दो, ब्राह्मणों को दो, पर उनको कह दो भाई पालन करना, तुम्हारे बच्चों का पालन करो, गौओं को रखो। कई भाई हमारे गौओं की रक्षा करते हैं पालन करते हैं, अकाल में फिर उनको कहते थे तुम ले जाओ अपनी अपनी गाय को ठीक तरह से ले जाओ, ऐसा काम करते हैं बीकानेर आदि में, कई जगह ऐसी बात है। तो गौओं की रक्षा करना ये हमारा खास काम है। तो गौओं की रक्षा करना कैसे, ये चमड़ा बढ़िया बढ़िया चमड़ा काम में लेते हैं, गो हत्या के भागीदार होते हैं। कलकत्ता में एक आदमी ने जूतों की दुकान बनाई, जो आप से आप मरी हुई गाय का चमड़ा देकर बनाएंगे दुकान चली नहीं, आप से आप मरी हुई गाय का चमड़ा मिलता ही नहीं, कतल की हुई गायों का चमड़ा मिलता है। ये भैंसा भैंसों का मिलता है, वो भी कतल की हुई गई भैंसों का ही मिलता है, जिससे लाव बनती है, जिससे पानी निकालते हैं, बड़े बड़े चमड़े के काम होते हैं, चमड़ों के कारखाने हैं। वैश्य भाइयों ने युद्ध के समय में माहेश्वरी और अग्रवालों ने मांस का ठेका लिया था, मिलिट्री को मांस देने के लिए ये ठेका लिया, तो व्यापार के नाम से चाहे सो काम करा लो और दवाई के नाम से चाहे जो गुटा दो खा लेंगे, दवाई है तो दवाई है, गौवा का घोड़े का कलेजा होता है उससे दवाई बनती है। कलकत्ते में वहाँ एक पंजाबी भाई उन दवाइयों के बनाने में काम करते थे, उसने कहा महाराज गऊ की कलेजा हमारे को रांधना पड़ता है, पकाना पड़ता है, उसे दवाइयां बनती है, ऐसे ऐसे गायों के हड्डियों से, गायों के कलेजे से, गायों के मांस से दवाइयां बनती है, गोबर से दवाइयां बनती है, बहुत बढ़िया गोमूत्र से बनती है, गोमूत्र गोबर तो हो गए तब काट करके मांस देकर उसे करते हैं लोग, इससे से बड़ी अशुद्ध चीज है। वो इन लोगों के मन में चला गया, अब गऊ की हत्या मत करो कहते हैं तो वो लगती नहीं कि किसी न किसी रीति से गोमांस की कुछ चर्बी और पेट में चली गई, उनके हृदय में वो दया गऊ के प्रति होती है वो दया नहीं रही, इस बात से आज गाय ऐसी मारी जाती है। हिंदू अगर सब इकट्ठे हो जाए कि भाई हम तो गऊ को नहीं मारने देंगे, हम तो वोट ही नहीं देंगे जो गऊ को मारे उनको वोट हम नहीं देंगे तो ठीक हो जाए, तो कांग्रेस के राज्य में गोहत्या बहुत बड़ी है, बड़ी भारी बड़ी है, ऐसी गोहत्या हो रही है। तो गौ की रक्षा करो, अपने घरों में रखो और पालन करो, गौशाला बनाओ, गौ सदन बनाओ गऊओं को रखने के लिए, जिससे गऊओं का पालन पोषण हो जाए। इसमें भी देखा है तो कई जगह गऊओं को रखते हैं परंतु उनमें दूध वाली गायों को रखते हैं, लूली लंगड़ी अपाहिज आरक्षित बूढ़ी ऐसी गायों को रखनी चाहिए जिससे उनकी रक्षा और सेवा बने। नासिक में एक गुजराती गौशाला है, मैं गया हूँ, बड़ा अच्छा प्रबंध है, दूध वाली गायों भी रखते हैं, उनसे खर्चा चलता है, उन पर गरीब गायों को भी रखते हैं, अपने भी यहाँ पर रखते हैं। फतेहराम जी महाराज ने करी है गौशाला, उसमें बड़ा अच्छा है, तो ऐसी गौओं रखी जाती है, अपने घरों में रखो, गौशाला बनाओ, गौ सदन बनाओ, जिनसे गायों की रक्षा हो जाए तो हमारी रक्षा होगी, गौओं की रक्षा से हमारी रक्षा होगी। अन्न जल वस्त्र ये तीन बिना जीना मुश्किल, अन्न जल वस्त्र ये तीनों चीजें बैलों से मिलती है, आजकल बड़ी मुश्किल हो रही है। अब बिजली लग गई है, बिजली से पानी मिलता है, उन गांवों में मैं गया हूँ और सुना है दो दो तीन तीन दिन पानी नहीं मिलता, वे लाभ है जो बैलों जो बैल तो बिक्री कर दिए और वही छोड़ दिया, अब केवल वो बिजली से होता है, बिजली हो जाए बंद, यहाँ पर हम देखते हैं थोड़ी देर बिजली बंद, थोड़ी देर बिजली बंद, आती नहीं बिजली, ऐसे बिजली बंद हो जाने से लोग प्यासे मर रहे हैं, नहीं तो बैल अपने पास में लाभ अपने सरस अपना पंजाली में लगा अपने आलिंगन उससे उससे अपना खीरी लगा करके निकाल देते थे, जल आ जाता था स्वतंत्रता से, अब ये बिक्री कर दिया, कारखाना चला जिससे बहुत मनुष्यों का उद्योग नष्ट हो गया है, वो हिम्मत नष्ट हो गई है। चलते थे 30-30, 40-40 कोस एक आदमी चलते थे, हम देखा है हमारा अमरसाम जी 24 कोस है, भेलू से बिना सर सुबह चल शाम को आ गए 24 कोस, वो धोरम टीबक 24 कोस, जो 25-26 कोस होते आजकल की विषय मिले हैं, मीलों से देखा जाए तो इतने कोस, तो ऐसे चलने वाले पुरुष से 30-30, 40-40 कोस एक दिन में, भगवान दास जी कूड़ी के थे वो खैरा पर निकले सिंतला के एक दिन में, तो ऐसे चलते थे, शक्ति थी उनमें चलने की, काम करने की ताकत थी, आज ये परवशता होगी अपनी शक्ति में नष्ट होगी, बीमार हो गए, चल नहीं सकते, काम कर नहीं सकते, काम करते हुए थक जाते हैं, जो पहले कैसे मजबूत होते थे, कार्य करते थे, ऐसे ही गांव में बिश्नोई नाम जातियां देखो कितनी मजबूत होती है, हमारे शहरों की बहनों में से मजबूत नहीं, बहुत छोटी अवस्था में बीमार हो जाती है, कई लड़के भी बीमार, मैं तो उन्हें कहता हूँ कि ये छोरा थे, छोरा से पाचा सीधा ही बूढ़ापे में चले गए, जवानी भूल गए, जवानी क्या होती पता ही नहीं, छोरे 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 से बूढ़ा हो गया, नहीं सब जवान हो गए पैसे बूढ़ा हो गए, ये दशा हुई है, तो गायों की रक्षा न करने से ऐसी ऐसी दशा हुई है भाई, इस बात गायों की रक्षा करो। गऊ ग्रास वृद्धि नहीं अपने देवे, तो रोटी बने उसमें गऊ ग्रास भोजन देना चाहिए। अब महाराज बम्बई आदि शहरों में ग्रास देने के लिए गाय नहीं मिलती, किसको दें? ऐसी मुश्किल हो रही है। सरकार से ऐसा प्रबंध हो गया कोई घर में गाय नहीं रख सकता, गाय रखे गोबर हो जाता, गंदगी हो जाती है। कुत्ता रखने का तो खुद नहीं है, कुत्ता रखो, कुत्ता पालो, अब कोई दोष नहीं, गाय रखो, ऐसा सरकार का आदेश है, कुत्ता रखते हैं। मैंने तो अंग्रेज पढ़े लिखा से पूछा है भाई कुत्ते में क्या गुण है, क्या विलक्षणता है, हमारे को बताओ, कोई हो तो हम भी बखान दे। सुना हमें कि बस उसने शौक है, शौक कुत्ता पालते हैं, कुत्ता रखते हैं, वही मजबूत है। शिकारी है तो कुत्ता रखेगा, गाड़ी जात के सदा शिकारी स्वान महा प्रसादी कर्ण मुख जीव हत्यारी जान रह अगाड़ी राज सदा शिकारी स्वान। कुत्ता शिकारी रहते शिकार करते, कुकर पकड़ते प्रसन्न मुख शुकर विष्णु सरोस खाव से बड़े खतरी बड़े दिल में गन संतोष। कुत्ता पहले सूर को पकड़ता है और पकड़ते फिर मारते हैं और उसको खाते हैं। फिर कुत्ते का ऐसा होगा पालन धर्म दशो धरणी पशु मारण कर्म सनातन चेत हो। पालना का काम था क्षत्रियों का, पालन धर्म दशो धरणी पशु मारण कर्म सनातन चेत हो। साले क्षत्रिय को सद भात पवित्र पड़ो तो पताल में बैठो, खाल उखाड़ तो फार तो मांस मरे पेशु में जो अंत जो बैठो है धिकार विकार विहीन शिकार में खाओ तो स्वान को ऐठो। ऐसी दशा हुई, अब क्या कहे किस ऐसी बात हुई है। तो भाई गौओं की रक्षा करो जैसे ठीक हो जाए, गौ पालन पोषण हो जाए। अब इसमें कोई बात है तो पूछो। नारायण नारायण नारायण, आप यहाँ खेती करते हो तो अल्लाह का कृपा करो गौओं को राखो। देखिए गौ रखते भी है पर खूब पालन करो अच्छी तरह से, जैसे गायों की बिक्री नहीं हो, कसाईयों में नहीं जाए, गौओं के मेला लगते हैं, मेले में बसरा पसरी बिक्री मना उसको दे देते हैं, कुछ शीश सरपंच को बेचते हैं। बहुत ख्याल रखो गोवंश नष्ट हो जाएगा इस साल से चलते। नारायण नारायण नारायण
राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 2/9/92 को प्रातः लगभग 8:30 बजे श्री राम द्वारा मथाने में हुआ। राम।